ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 9। पुण्य गंधः पृथिव्यां च तेजस चाश्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य मूल आद्य, गंध सुगंध, पृथिव्याम पृथ्वी में, च भी तेजः प्रकाश, च भी अस्मि हूँ, विभावसौ अग्नि में, जीवनम प्राण, सर्व समस्त भूतेषु जीवों में, तपः तपस्या च भी अस्मि हूँ, तपस्विषु तपस्यों में। इस श्लोक का अनुवाद, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीव का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। आप भी बोलिए, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, जथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वो कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावशु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। ये अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचक पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य के आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। पुण्य गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मी विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मी तपस्विषु। इस सप्तम अध्याय में भगवान अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो कौन है। अर्जुन के साथ या कृष्ण के साथ अर्जुन का जो संपर्क था वो भाई और मित्रता का संपर्क था। कृष्ण और अर्जुन भाई थे, कुंती थे कृष्ण का पिताजी का बहन। जय श्री श्री राधा मदन मोहन। पिताजी का बहन को क्या कहते हैं? फूफक, बुआजी, बुआजी। कुंती देवी थे कृष्ण का बुआजी और वसुदेव उस विचार से कृष्ण का पिता वसुदेव था अर्जुन को, अर्जुन का या पांडव का मामा। तो ये दो भाई थे, भाई का संपर्क। परंतु असल में कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। भगवान ऐसे कभी किसी के पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के सखा के रूप में, किसी के प्रेमिक के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसे संपर्क भगवान दान करते हैं, परंतु भगवान हर स्थिति में भगवान ही रहता है। और जो भगवान का नज़दीक है उसको कभी ना कभी किसी तरह पता चल जाता है कि कृष्ण भगवान है। जैसे वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण कंस की कारागार में जन्म लिए थे। भगवान फिर कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जो जन्म है वो वैसे मामूली इंसान का जन्म की तरह नहीं है। भगवान अपने इच्छा के अनुसार लीला विलास करने के लिए, मतलब भौतिक जगत में अपने आप को प्रकट करके अपने जो उनका जो भक्त है उनको संग देने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये एक विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो ऐसे संपर्क भी जोड़ लेते हैं किसी के साथ, अपने किसी के साथ जोड़ते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ जोड़ते हैं। भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों आए थे? क्योंकि वसुदेव और देवकी भगवान का भक्त थे। अर्जुन और पांडव ने भगवान का भाई और सखा के रूप में कैसे उनका यह सौभाग्य मिला? क्योंकि वो भक्त थे। परंतु जो भक्त नहीं है वो ना तो भगवान को पहचानता है और ना तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का अवसर मिलता है। जैसे यद्यपि दुर्योधन भी अर्जुन के साथ, कृष्ण के साथ उसका भी संपर्क था, परंतु दुर्योधन भगवान को पहचाना नहीं, कृष्ण को भगवान के भगवान कहकर समझ नहीं पाया। क्यों क्यों नहीं? जो भक्त नहीं है उन्होंने भगवान को पहचानते नहीं, पहचान नहीं सकते हैं। क्यों? भगवान इसके बारे में भी अर्जुन को कह रहे हैं भगवद गीता में, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। चूंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, उस कारण इस कारण मैं तुमको तुमको मैं अपना परिचय प्रदान कर रहा हूं। भक्त ही केवल भगवान को पहचान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्चाश्मि तत्वतः। तत्वतः सही रूप से भगवान को केवल भक्त ही पहचानते हैं, अभिजानाति पहचानते हैं, जानते हैं। वैसे यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन का भाई था और अर्जुन भी कृष्ण का अपना भाई के रूप में ही दर्शन कर रहे थे, अपने बुआ जी का लड़का के रूप में दर्शन कर रहे थे, परंतु ये कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि अर्जुन को जब भगवान भगवद गीता सुना रहे थे तो पहले तो अर्जुन ये लड़ाई करने में इनकार कर दिया, बोला कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाने लगा। अर्जुन बहुत युक्ति प्रदान किए थे कि ये लड़ाई क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन कृष्ण को बताया कैसे मैं भीष्म के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, जो मेरे पूजनीय हैं, पुजारह वड़ी सूदन कथं भीष्म महं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्सामी पुजारह वड़ी सूदन। हे कृष्ण, कैसे मैं भीष्म जी के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति बाण निक्षेप करूंगा, क्योंकि वे तो हमारे पूजनीय हैं, पुजारह वड़ी सूदन। तो ऐसे बहुत युक्ति प्रदान किया अर्जुन क्यों इस लड़ाई नहीं करना चाहिए, परंतु अर्जुन को यह भी पता था कि उसका जो विचार है वो सही नहीं था। उनका विचार, उनका मन में ऐसे कुछ उलझन फिर रह गया। तब अर्जुन ने भगवान को पूछा, कृष्ण को बोला, कृष्ण मैं तो ऐसे भ्रमित हो गया हूं, मैं तो ऐसे द्विधाग्रस्त हो गया हूं, तो आप बताइए। आप भी नहीं बोला, बोल तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। शिष्यस्ते अहं साधि मांगतांग प्रपन्न। मैं आपका शिष्य के रूप में आपके पास ये प्रश्न कर रहा हूं। ऐसे जब अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु के रूप में वरण किया, तब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। पहले नहीं दिया, पहले कृष्ण जब अर्जुन इतने सारे कुछ कह रहे थे, कृष्ण बिल्कुल चुप से खड़ा हुआ था, सुन रहा था। परंतु अर्जुन ने जब कृष्ण को बताया कि शिष्यस्ते अहं, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, साधि मांगतांग प्रपन्न, मैं आपसे प्रपत्ति कर रहा हूं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान अर्जुन को पहले सबसे पहले क्या बताया, अर्जुन को बताया, देखो अर्जुन तुम बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े पंडित हो, परंतु असल में तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। असच्चान अनुसोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गता सुन गता सुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। ये असोच्चान अनुसोचस्त्वं, अशोच का मतलब है जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अशोच अनुशोचस्तन, उसकी बारे में तुम शोक कर रहे हो। फिर प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे, प्रज्ञा का मतलब है पंडित, जिसको प्रकृष्ट रूप में से जिसके जिनके पास ज्ञान है। वैसे तुम जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए उस विषय में शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादंश्च भाष्यसे, और एक पंडित जैसे बातें कर रहे हो। परंतु गतासु न गताशुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता, जो पंडित है वो जो अनित्य विषय पर वो शोक नहीं करते। इस भौतिक जगत में हमारा जो स्थिति है और बाकी सबका जो स्थिति है वो अनित्य है। ये शरीर नाशवान है। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसका अवश्य ही मृत्यु होगा। ध्रुव, ध्रुव का मतलब एकदम स्थिर सत्य। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी अवश्य ही होगा। तो इस विषय में सोचना नहीं चाहिए। तो ऐसे अर्जुन को भगवान समझाना शुरू किया। भगवद गीता का शुरू शुरू में जब अर्जुन भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर दिया, प्रपन्य शब्द का ये हिंदी में आता है, ये शब्द प्रपन्य, प्रपत्ति शब्द आता है हिंदी में, प्रपत्ति, प्रपत्ति का मतलब है समर्पण, हाँ शुद्ध हिंदी में आता है, ये संस्कृत है, हिंदी तो संस्कृत से ही आया, तो उसका संस्कृत का शब्द हिंदी में ही है, परंतु शायद प्रचलन नहीं है, व्यवहार नहीं होता है। अच्छा हाँ, ऐसे सरल हिंदी में क्या होगा, समर्पण या शरणागति, शरण लेना। माम एकम शरणं ब्रज, भगवान अर्जुन को बताया। तो यहां भी हम देख रहे हैं अर्जुन भगवान को जब कह रहे हैं कि मैं आपसे आपके पास अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, आपका शरण ले रहा हूं, आप गुरु के रूप में हमें शिष्य बनाकर शिक्षा दीजिए, तब भगवान अर्जुन को निर्देश देना, उपदेश देना शुरू किया। फिर भी वो जो उपदेश था वो उपदेश भी ऐसे एक ज्ञानी व्यक्ति जैसे उपदेश देते हैं वैसे ही मालूम हो रहा था। परंतु चतुर्थ अध्याय में हम देखते हैं, तीसरी अध्याय में भगवान कर्मयोग के बारे में अर्जुन को समझाया, कैसे कर्म करना चाहिए, किस कर्म, कैसे कर्म करने से ये कर्म हमारे इस भौतिक जगत का बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं, कैसे कर्म करने से कष्ट नहीं प्राप्ति होता है परंतु सुख प्राप्ति होता है, ये निर्देश भगवान अर्जुन को तीसरी अध्याय में दिया। तो देने के बाद चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इस ज्ञान में सबसे पहले सूर्यदेव विवशान को दिया था, विवशान उनका पुत्र मनु को दिया था, मनु उनका पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे परंपरा के क्रम से राजर्षियों के माध्यम इस ज्ञान का प्रवाह चल रहा था। इमं विवश्यते जोगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवश्वान मनविप्राहो मनुर इक्षाकुबे अब्रवीत और एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु। परंतु सकालेने महता जोग नष्ट परंतव स एवायं मयाते अद्य जोग प्रक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। इस ज्ञान मैं सब पहले विवश्वान को दिया था। विवश्वान कौन है? विवश्वान है सूर्य देव, विवश्वान। और विवश्वान के पुत्र वैवश्यत मनु। ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का आगमन होता है, आविर्भाव होता है। उनमें से एक है वैवश्यत मनु अर्थात विवश्वान के पुत्र। पहले मनु है स्वयंभुव मनु, ब्रह्मा जी का पुत्र मनु। ब्रह्मा का और एक नाम है स्वयंभू, स्वयं जिसका उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान का नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ था, इस कारण ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। और स्वयंभू का ब्रह्मा जी का पुत्र जो मनु, उसका नाम है स्वयंभुव मनु। वैसे ही विवश्वान का पुत्र जो मनु, उनका नाम है वैवश्यत मनु। तो मनु का पुत्र था इक्ष्वाकु, जिस वंश में रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ था। इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ, उसके कारण रामचंद्र जी का जो वंश है उस वंश का नाम क्या है? सूर्य वंश, सूर्य वंश। क्योंकि विवश्वान सूर्यदेव, सूर्यदेव का पुत्र मनु, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का वंश में, इक्ष्वाकु वंश में रामचंद्र का आविर्भाव हुआ था। तो ऐसे जब अर्जुन को भगवान ने बताया कि मैं सबसे पहले इस ज्ञान विवश्वान को दिया था, विवश्वान अपना पुत्र मनु को दिया, जय श्री राधा मदन मोहन की जय, तब अर्जुन एक स्वाभाविक प्रश्न कृष्ण को किया था। वो प्रश्न था, कृष्ण तुम्हारा जन्म तो उस दिन कुछ दिन पहले हुआ था और विवश्वान तो कितने पहले उसका जन्म हुआ है, तो कैसे मैं समझूंगा कि विवश्वान को इस ज्ञान आप दिए थे? अपरंग भवतो जन्म परम जन्म विवश्यतः कथमेताद विजानियाम तमादौ प्रक्तवान इति, तमादौ प्रक्तवान इति। प्रक्तवान शब्द का अर्थ है प्र उक्तवान, बताए थे। कैसे मैं समझूंगा कि आप इस ज्ञान विवश्वान को बताए थे, प्रदान किए थे? क्योंकि अपरंग भवतो जन्म, कुछ साल पहले आपका जन्म हुआ था। परंग जन्म विवश्यतः, विवश्वान के जन्म तो बहुत सारे करोड़ों साल पहले विवश्वान का जन्म हुआ था। कथम एताद विजानियाम तमादो प्रक्तवानी थी। तब भगवान अपने बारे में अर्जुन को समझाना शुरू किया। भगवान तब बताए अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवचार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत बहुत बार जन्म हुआ है, परंतु उस सारे जन्म के बारे में तुम सब कुछ भूल गए हो, बल्कि मेरा पूरा याद है। तानी अहंग वेद सर्वानी न त्वंग वेत्थ परंतप। तानी अहंग वेद सर्वानी, उस जन्म के बारे में, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन, मेरा और तुम्हारा जन्म हुआ है, हुआ था, परंतु वो सारे जन्म के बारे में मेरा पूर्ण याद है, बल्कि तुमको नहीं है। ये ऐसे हम देखते हैं साधारण जीव और भगवान में अंतर क्या है। हमारा जब मृत्यु होता है, मृत्यु के पश्चात हम इस जन्म के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर जब नया जन्म हम लेते हैं तो शुरू से हमारा स्मृति का उद्गम होता है। हो सकता है कि बहुत बड़े पंडित हैं, परंतु मृत्यु के पश्चात फिर जब जन्म होता है तब ABCD से ही शुरू करना पड़ता है सब, है ना। पूर्व जन्म के बारे में कुछ ज्ञान याद नहीं रहता है। ऐसे जीव का जन्म का ऐसा ही स्थिति है। मृत्यु के पश्चात सब भूल जाते हैं और जन्म के बाद फिर से नया रूप से सब शुरू होता है, परंतु भगवान का वैसा नहीं। भगवान जब जन्म लेते हैं, भगवान यद्यपि बहुत बहुत बार जन्म लेते हैं, परंतु भगवान को सारे कुछ याद रहता है। कुछ भी सतानी अहं वेद सर्वानी, पूर्ण रूप से उसके विषय में मेरा ज्ञान रहता है। तो इसकी पश्चात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म में भी कुछ अंतर है। कैसे? जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है। भगवान का जो जन्म है, भगवान का जन्म ऐसे साधारण जीव के जन्म के जैसा नहीं है। हम कर्म की फेर से, कर्म के अनुसार हमें जन्म लेता है हम, परंतु भगवान अपने इच्छा के अनुसार आते हैं। भगवान का जन्म दिव्य है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं साम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाय। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अज हूं, अज का मतलब क्या है? ज का मतलब है जन्म और अ निषेधात्मक है, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान जन्म रहित है। अज अज अपि अपि यद्यपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अज हूं, और मैं भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं सारे जीवों का, सारे संसार का मालिक हूं। भूतानाम ईश्वरोपि सन, फिर भी प्रकृतिम साम अधिष्ठाय संभवामि। मेरा अंतरंग प्रकृति के आश्रय लेकर, मतलब जोग माया के प्रभाव से, संभवामि आत्म माया, मेरे आत्म माया अंतरंग शक्ति जोग माया के प्रभाव से मैं प्रकट होता हूं। संभवामि आत्म माया। और उसके पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं क्यों भगवान आते हैं, क्यों भगवान जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का ग्लानि होता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि आत्ममायाय। मैं जोग माया के प्रभाव से धर्म संस्थापन करने के लिए प्रकट होता हूं। संभवामि, संभवामि जुगे जुगे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो इस चौथा अध्याय में ऐसे हमें थोड़ा बहुत ये मिल रहा है कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है। देखिए, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैं कह रहा हूं इसलिए तुमको मानना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं। भगवान युक्ति दे रहे हैं क्यों कृष्ण भगवान है। और देखिए, गीता में आप तो पढ़े होंगे, पढ़ चुके होंगे कि ऐसे धीरे धीरे अपना परिचय प्रदान करने के बाद एकादश अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विश्वरूप प्रदर्शन किया, विश्वरूप दिखाया, अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। तो और किसी का मन में और कोई शक रह सकता है कृष्ण कौन है? जो नास्तिक है वो नहीं मानेगा, परंतु जो विचार लेकर, बुद्धि के द्वारा विचार करके, जब ये भगवद गीता का ज्ञान श्रवण करेंगे, तब उनको सही ढंग से ही पता चल जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण कोई किसी को बनाया हुआ भगवान नहीं, जैसे आजकल होता है, फालतू आदमी को सब भगवान बना देते हैं।
भगवान कौन है? भगवान सारे संसार के मालिक हैं। जैसे ऐसे कोई आदमी बोलता है कि ये भगवान है, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, सब भगवान हो, उसको असल में कोई ज्ञान नहीं है। भगवान, ये भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, ज्ञानवान शब्द का अर्थ क्या है? जिसको ज्ञान है। बलवान, हाँ, जिसका बल है। धनवान, धन है। तो भगवान जिसका भाग है। और भाग शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नांग इति भगांगना। भाग का अर्थ है पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश और पूर्ण त्याग, वैराग्य। तो ये शन्नांग इति भगांगना, ये छह जो हैं, ये छह गुण जो हैं, ये हैं भग शब्द का अर्थ। और बाण शब्द का अर्थ क्या है? बाण शब्द का मतलब जिसके पास है। जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास गुण है वो गुणवान। तो वैसे ये छह गुण जिनमें है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नांग इति भगांगन। तो आप थोड़ा विचार कीजिए, ऐसे कोई है जो कह सकता है कि मेरे पास सारे ऐश्वर्य हैं, सारे संपदा है? थोड़ा बहुत किसी के पास हो सकता है, परंतु समग्रस्य, सारे संपद, सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है। बल, शक्ति, वीर्य, कोई कह सकता है कि उसके पास समग्र वीर्य है, समग्र शक्ति है, समग्र श्री, पूर्ण सुंदरता, यश, ज्ञान, वैराग्य? इसका छह क्या? एक भी किसी के पास नहीं होता है। परंतु ऐसा कोई है जिनके पास ये साढ़े छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप में है? हाँ, वो है भगवान। तो आप बताइए भगवान कौन है? हाँ? अगर हम आपको पास बोला, आपको बोला कि मैं भगवान हूं, तो आप क्या पूछेंगे? महाराज, आप तो भगवान कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, तो आपके पास ये छह गुण है क्या पूर्ण रूप से? अगर नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि आप भगवान हैं, है ना? ऐसे ही सही विचार ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये गुण अगर नहीं है तो भगवान कैसे बनेंगे? ऐसे एक बार ऐसा विचार हो रहा था, किसी ने पूछा, आप मानते हैं ये फलाना आदमी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, बोला, ये आप मानते हैं ये भगवान है? तो मैं बोला, देखिए, मैं ये तो मेरा मानना और मेरा ग्रहण करने का सवाल नहीं है। तो आइए विचार कीजिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है और उसके मुताबिक हम इसका विचार करते हैं। उनमें क्या सारे ऐश्वर्य हैं? उनके पास क्या सारे वीर्य या शक्ति हैं? वो चुप रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। और ये बहुत सारे आदमी बैठा, करीब 1000 आदमी बैठा था एक सभा में, वहां ये विचार हो रहा था। तो जब मैं बोला कि उनके पास सारे सुंदरता है, तो सारे आदमी हंसने लगा क्योंकि वो देखने में वो बहुत बहुत कुत्सित है। कुत्सित शब्द होता है हिंदी में, कुरूप है, बहुत कुरूप है। तो ऐसे हम देखते हैं, परंतु भगवान को देखिए, कृष्ण, जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। ये जो रूप है ये सारे सुंदरता का श्रोत्र है। अचिंत गुण स्वरूपम और अचिंत चिंता के अतीत सारे गुणों का ये स्वरूप है। ये भगवान और इंसान में ये अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। और भगवान को ही भगवान के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जो भगवान नहीं है उनको नहीं करना चाहिए, करने से मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा, करने से क्या होगा, जो हमें चाहना है, जो प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कोई भीख मांगा अगर बोलेगा कि मैं करोड़पति हूं, तो आप मान लिया कि करोड़पति हैं, तो आप जाके बोला हमको 2-4 लाख रुपया देंगे। हाँ, 2-4 लाख रुपया प्राप्ति के लिए अगर आप कोई भीख मांगा के पास गए तो रुपया क्या मिलेगा आपको? आपको नहीं, उसको पास ही कुछ नहीं है तो कैसे देंगे। बल्कि जो करोड़पति हैं है, उसके साथ अगर आपका मित्रता हुआ है और आपका कुछ परेशानी हुआ, आपका कुछ रुपया का जरूरत होगा और उसके पास अगर जाएंगे तो बोलेगा ठीक है ले लो। हाँ, 2 लाख में काम होगा या 5 लाख लगेगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ता है, तब सही रूप से हमारा सारे समस्या का समाधान हो जाता है। और भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र में बहुत सरल रूप से इसका वर्णन हुआ है, कृष्ण ही भगवान है। और कृष्ण का प्रकाश होता है 2 रूप से, एक है स्वांस एक है विभिन्न अंश। स्वांस का प्रकाश जो है स्व अंश वो है अवतार, और विभिन्न अंश जो है वो है हम सब जीव। हम भी भगवान का अंश हैं, परंतु हम भगवान का क्षुद्र अंश है। जैसे चिंगार आग का अंश है, चिंगार भी आग है, छोटा सा, परंतु छोटा सा आग है। और छोटा सा आग होने के कारण क्या होता है, जब चिंगार भस्म में गिरता है तो वो भस्म बन जाता है। वैसे ही जीवात्मा, हम जो भगवान के विभिन्न अंश हैं, हम जब भगवान से अलग हो जाते हैं और इस भौतिक जगत में आप पर पहुंचते हैं, तब हम जड़ बन जाते हैं, हम भी पंच भौतिक बन जाते हैं। जैसे चिंगार भस्म में गिरने के कारण भस्म बन जाता है, वैसे ही जीवात्मा भगवान से अलग होकर जब भौतिक जगत में आ जाते हैं तो वो भी भौतिक बन जाते हैं, जड़ बन जाता है। जैसे आप देखिए, हम सब क्या सोच रहे हैं, ये शरीर को हमारा स्वरूप समझ रहा है। ये शरीर किससे बना है? ये भौतिक पंचभूत से बना है, परंतु असल में हम क्या शरीर है? नहीं, असल में हम चिन्मय आत्मा है जो भगवान का अंश है, परंतु हम हमारा स्वरूप को भूल बैठे हैं और अपना ये शरीर को हमारा स्वरूप समझ रहे हैं। परंतु भगवान का जो स्वांश प्रकाश जो है, भगवान का जो अवतार है, वो कभी माया का फेर में, माया का चक्कर में गिर नहीं जाते। यहां पर आने से भी अपना भगवत्या पूर्ण रूप से उनमें विराजमान रहता है। ये जीव और भगवान में अंतर है। ऐसे अवतार और भगवान में कोई अंतर नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतारम अकरोद भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान जो
गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ये रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, राम नृसिंह वराह कूर्मा, ये जो अवतार हैं ये भगवान का ही प्रकाश है, स्वयं स्वरूप का प्रकाश है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, अपना स्वरूप का ही प्रकाश है। ऐसे नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु ऐसे असंख्य अवतार के रूप में अपने आप को प्रकाश किए हैं। एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। असल बात देखिए यह है कि अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हाँ जब हम कोई विषय में जानना चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं हमको मेडिकल कॉलेज में जाके, मेडिकल स्कूल में जाके डॉक्टर के पास शिक्षा लेके तब डॉक्टर बनना पड़ेगा। हम अगर फिजिसिस्ट वैज्ञानिक फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो वैसे ही आध्यात्मिक विषय के बारे में अगर हमको जानना है तो उस विषय के जो किताबें हैं और उस विषय के ज्ञान प्रदान करने वाला जो शिक्षक हैं उनके पास जाकर ये शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं रूप से नहीं हो सकता है। ये अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके स्टडी करना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, कुछ चेष्टा नहीं करना है, कर रहा है भगवान है या नहीं, जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं और बोल देते हैं भगवान नहीं है। यह क्या बुद्धिमान का विचार है? नहीं। जो बुद्धिमान है वो विचार करके देखेंगे, ठीक है चलो भगवान है या नहीं पहले तो विचार करके देखते हैं। और भगवान के बारे में जानना इतना कठिन नहीं है, भगवान खुद अपने बारे में कह रहे हैं। एक एक ग्रंथ में ये भगवद गीता एक ग्रंथ है, इसको अब अगर हम समझ लिया, इसका जो निर्देश इसका जो उपदेश है ये अगर हम समझ लिया तो भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, हमारे बारे में, दूसरे के बारे में सब कुछ हम जान लेंगे। ये ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है ये भगवद गीता। सारे वेदों का सार निचोड़ है, ये निष्कर्ष है भगवद गीता। तो इस श्लोक में सप्तम अध्याय में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इस श्लोक में जैसे बताया पुण्य गंध पृथ्वीयांच, पुण्य का मतलब आद्य मौलिक, जो हर वस्तु में जो गंध है वो भगवान है, श्री कृष्ण ही है। पुण्य गंध पृथ्वीयांच तेजस चाश्मि विभावशो, और अग्नि का जो तेज है, उष्मा है, वो भी मैं हूं। जीवनं सर्वभूतेषु, हर प्राणी में जो जीवन है वो भी कृष्ण है। और तपश्चास्मि तपस्षु, और तपस्वियों का जो तपस्या है, तप है, वो भी मैं हूं। इसके पिछले श्लोक में भगवान बताया रसोहम अप्सु कौन्तेया, रस का मतलब पानी या तरल, जो खाने का जो है उसमें जो रस है, जो स्वाद है, वो भी श्री कृष्ण ही है। रस हम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशिसूर्जय, और सूर्य और चंद्रमा का जो किरण है, ज्योति है, प्रभा है, वो भी मैं हूं। ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं अपना विभूति, भगवान का वैभव कैसा है। भगवान ही सब सब हर वस्तु में हम ऐसे भगवान को दर्शन कर सकते हैं। प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो प्रणव है ओमकार, वो मैं हूं। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दं खे, और खे मतलब आकाश में जो शब्द है वो शब्द भी मैं हूं। और पौरुषं नृषु, मनुष्य में जो बीर्य है, पुरुषकार है, वो भी मैं हूं। इस तरह हम सर्वत्र भगवान को दर्शन कर सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये भगवान का वाणी है, ये भगवान जो कह रहे हैं पूर्ण सत्य है।